अगर पूरे लेसन का अगर हम टॉपिक देखें तो वो है तलाक, इद्दत, रजात और खुला के मसाइल। हम देखेंगे आयत नंबर 229 को। अत्तलाक मर्रतानि फइमसाकुम बिमारूफ नौ तसरीहुम बि एहसान। तलाक दो बार है, फिर या तो सीधी तरह औरत को रोक लिया जाए या भले तरीके से इसको रुख्सत कर दिया जाए। लेकिन वला यहिल्लु लकुम अन ताखुज़ू मिम्मा आतैतुमूहुन्न शैया, और रुख्सत करते हुए ऐसा करना तुम्हारे लिए जायज़ नहीं कि जो कुछ तुम इनको दे चुके हो इसमें से कुछ वापस ले लो। हाँ, मगर इल्ला अन यखाफा अल्ला युकीमा हुदूद अल्लाह, अलबत्ता ये सूरत मुस्तस्ना है कि ज़ौजैन को अल्लाह के हदूद पर कायम रहने का अंदेशा ना, यानी अल्लाह की हदों पर कायम ना रह सकने का अंदेशा हो। अगर ऐसी सूरत हो तो क्या किया जाए? फ़ाइन खिफ्तुम अल्ला युकीमा हुदूद अल्लाह, अगर तुम्हें इस बात का डर हो कि तुम दोनों अल्लाह की हदों पर कायम नहीं रह सकोगे, तो फला जुनाह अलैहिमा फी मफ्तदत बिही, तो फिर इस बात में कोई गुनाह नहीं कि औरत अपने शौहर को कुछ मुआवजा देकर अलहदगी हासिल कर ले। तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह ताला के मुकरर करदा कानून है, यानी ये अल्लाह की हदें हैं। फला तातदूहा, लिहाजा इनसे तजावुज़ ना करो, क्योंकि वमन यतअद्द हुदूदल्लाहि फ़ऊलाइका हुमुज़्ज़ालिमून, और जो कोई अल्लाह की हदों से आगे बढ़ेगा तो बेशक वही लोग जालिम हैं। यहाँ से सबक का आगाज़ है, और बुनियादी तौर पे लफ्ज़ तलाक पहली दफ़ा यहाँ हमारे सबक में आ रहा है। इस एक आयत में अरब माशरे में फैली हुई कुछ खराबियों का तذکرہ है जो शादी, निकाह और तलाक के मामले में थी। थोड़ा सा मिजाज समझ लें इस्लाम का तो फिर इंशाल्लाह इस चीज़ को हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। पहली बात तो ये है कि इस्लाम जिस माशरे में आया तो वो लोग बिगड़े हुए मुसलमान थे। बस पॉइंट्स में लिखें बातें ताकि आप उसको बाद में जब टैली करें तो आपको समझना आसान हो। कोई ऐसा माशरा नहीं था कि जिन्होंने कभी कोई बात सुनी नहीं। ठीक, एक अरसा गुजर चुका था अम्बिया कराम को वहाँ से वहाँ आए हुए, लेकिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स थे, लिहाजा उनके अंदर से दीन की असल रूह ख़त्म हो चुकी थी। अरब माशरे में भी औरत और मर्द के मिलाप के लिए शादी को निकाह कहा जाता था, लेकिन इसकी बहुत ही ज़्यादा बेहुदा किस्म की इकसाम थी। तकरीबन चार मुख्तलिफ किस्म के निकाह होते थे, जो इंशाल्लाह आगे जाके जहाँ हम लफ्ज़ निकाह पे बात करेंगे तो लिखाऊंगी, जिसमें से एक यही था जो आज के दौर में भी है कि कोई लड़का अपनी, मतलब कि लड़का किसी की बहन या बेटी से अगर निकाह करना चाहता तो वो लड़का या उसके घर वाले या उसके बिहाफ पे कोई भी उस लड़की के बाप या भाइयों के पास जाते और उससे रिश्ता मांगते और उस पे निकाह होता। ये किस्म भी उस दौर में मौजूद थी जिसको इस्लाम ने कंटिन्यू रखा, क्योंकि इसमें कोई ख़राबी नहीं थी। इसके अलावा जितनी किस्म के निकाह थे, आप कह लें कि वो जिना की बिगड़ी हुई शक्लें थी, कि बाज़ दफ़ा तो बाज़ शोहर अपनी बीवियों के दूसरों से निकाह कराते, बाज़ दफ़ा एक औरत कई कई मर्दों के पास आती, और बाज़ दफ़ा मारूफ लोग जो बहुत मारूफ कुछ सलाहियतों वाले होते तो उनसे जाके औरतें ताल्लुक़ कायम करती ताकि बच्चे सेहतमंद हों। तो बहरहाल इस किस्म की जो ख़राबियाँ थी वो मौजूद थी, लेकिन निकाह होता था। पहली चीज़ जो आपको अभी तक की बात से समझ आनी चाहिए कि उस दौर में भी निकाह का रिवाज था। दूसरी चीज़ जो आज हमारे इस टॉपिक में है वो है तलाक। तलाक का लफ्ज़ भी अरब माशरे में मौजूद था, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी खराबियां आ चुकी थी, जिसमें से एक खराबी क्या थी? कोई मर्द जितनी चाहता मर्जी तलाकें बीवी को दे देता। करता क्या कि तलाक देता, फिर जो ही बीवी की इद्दत पूरी होने वाली होती फिर एक दफ़ा जाके रजू कर लेता, फिर तलाक दे देता, फिर उद्दत से वो निकलने वाली होती फिर तलाक दे देता। इस तरह एक औरत साल हा साल तक इद्दत में ही रहती। इमेजिन करें, एक औरत चले भी इधर से गुजर रही है, जान छूट जाएगी, किसी और जगह चले जाएंगे, किसी और जगह निकाह होगा, लेकिन मर्द सजा देने के लिए, सताने के लिए साल हर साल अनगिनत तलाक़ें देता था। उस माशरे में तलाक़ की कोई हद नहीं थी कि बस इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। अब औरतों पे जुल्म होता तो अल्लाह ताला ने यहाँ अत-तलाक मर्रतान कहकर उस बात को ख़त्म कर दिया कि अब ख़त्म, ये खेल अब और नहीं खेला जाएगा। औरतों के जज्बात के साथ इससे ज़्यादा तुम नहीं खेल सकते। अब ज़्यादा से ज़्यादा तलाक जिसमें रुजू किया जा सके वो दो हैं। मर्रतान का लफ्ज़ जहाँ मर्रतुन का तस्निया है, ड्यूल है। और अगर आप इस लफ्ज़ को देखें तो इसे एक लफ्ज़ से पता चल रहा है कि तलाक का अमल पूरे का पूरा दो मर्तबा दोहराया जाएगा। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, बहुत ही बिग, ह्यूज ह्यूज मिसकंसेप्शन। और वो क्या है कि जब तक 3 बार तलाक ना दी जाए तो तलाक नहीं होती। और उसके लिए कुछ एक्सट्रीम्स हैं कि जो कहते हैं कि एक ही वक्त पे बैठे बैठे 3 कह दो या जिस तरह भी कहो, तो यहाँ बात समझ लीजिएगा कि तलाक एक ही स्टेप में हो जाती है पूरी, लेकिन इसको करने के 3 चांसेस हैं। लफ्ज़ मर्रतुन से पता चल रहा है कि एक दफ़ा तलाक दे दो, फिर दोबारा देनी है, फिर देनी है, दो के बाद नहीं दे सकते। अत-तलाक मर्रतान, पहले इसका खुलासा कर लेते हैं आयत का। अल्लाह ताला मर्दों को हुक्म दे रहा है कि देखो तलाक अब जिसमें तुम औरत को वापस पलटा सकते हो ख़त्म, अब दो के बाद अगर 3री बार तुमने बीवी को तलाक दी तो फिर इद्दत के पूरा होते ही वो तुम्हारे निकाह से निकल जाएगी। बात वाज़े, औरतों के हक़ की इधर अल्लाह ताला हिफाजत फरमा रहे, खेल बनने से बचा लिया ना। जिस तरह इस्लाम ने बाकी चीज़ों को चैनलाइज किया है ना, जो भी उस सोसाइटी की थी, जैसे बेटियों के कत्ल की बातें होती थी और शराब की हुरमत, इसी तरह यहाँ तलाक को मिनिमाइज किया गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे शादी की हद भी रखी, क्या कि एक मर्द ज़्यादा से ज़्यादा एक वक्त में 4 शादियाँ कर सकता है। अरब माशरे में भी और पिछले अंबिया की शरीयत में भी शादियों की भी कोई हद नहीं थी। बाज़ दफ़ा आप पढ़ेंगे एक एक शख्स की 100-100 बीवियाँ भी थीं। खुद हज़रत दाऊद सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उनकी 100 बीवियाँ थीं, आम बात थी। या आज हमारे नबी के ऊपर जो बातें डालते हैं लोग और 10-11 शादियों की बात करते हैं, तो ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं। तो शादियाँ भी अनलिमिट थीं और तलाक़ें भी अनलिमिट थीं। इस्लाम ने आके शादियों को 4 पे ख़त्म कर दिया। ये टॉपिक आगे आएगा जहाँ हम पढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त हम तलाक की बात कर रहे हैं। तो आप लिखें अत-तलाक मर्रतान, तलाक 2 बार है। क्योंकि अगर एक ही तलाक 2 स्टेप्स में होती ना, तो यहाँ क्या आना चाहिए था, तलाक़तान। आप थोड़ी सी ग्रामर है जो आप नहीं समझ सकेंगे, लेकिन सिर्फ लफ्ज़ों से ही समझ जाएंगे कि तलाक का अमल 2 मरतबा दोहराया जाएगा। ये ऐसी है जैसे कोई किसी से, मैं आपसे कहूँ कि मुझे पानी दें, अब आप में से कोई जाए, जो भी जिसकी ज़िम्मेदारी है, वो जाता है और 1 गिलास पानी का लेके आ गया मेरे पास, मैंने ले लिया। अब हो सकता है थोड़ी देर मैं पी लूँ और फिर खाली हो तो मैं फिर कहूँ, तो ये एक और गिलास ले आएंगी, तो मैं कहूँगी कि ये गिलास पानी का गिलास मर्रतुन व मर्रतुन, 1 टाइम एंड देन अदर टाइम, 2 दफ़ा लेकर आए, ठीक है। लेकिन अगर मैं इनसे कहूँ कि आप पानी लाएं, तो ये एक ही गिलास से डबल बड़ा कोई बर्तन लें और उसमें 2 गिलास पानी डाल के ले आए, तो वो अत-तलाक का तान वाली कैफियत है, ठीक है। सिर्फ ना भी समझ आए तो इसको इग्नोर कर दें कि यहाँ से पता चला कि 2 दफ़ा इसके बाद नहीं। अब क्या करें, सवाल है। अच्छा जी, पहले तो हम 10-10 तलाक़ें देते थे और अब सिर्फ 2 ही देंगे। जो समझ ना आए उसको स्किप करके आगे चलें, ठीक है। जो पॉइंट समझ ना आए उससे आगे चलें। अत-तलाक मर्रतान, 2 मरतबा अब तलाक है, कौन सी, नीचे लिख लें ब्रैकेट में कि जिसके अंदर रुजू का हक है। अब इसके बाद क्या करें, आयत को नज़र में रखिएगा। फ़इम्साकुम बिमारूफ, अब रोक लो मारूफ तरीके से। ये क्या है, इसके नीचे आप एक छोटा सा डाउन एरो लगाएं और लिखिए कि रुजू कर लो। मर्दों को हुक्म दिया जा रहा है कि अब इसके बाद या तो बीवियों को रख लो, यानी अब नहीं जाने दो, ख़त्म, बस अब तुम्हारे पास आखिरी चांस ख़त्म हो गया है, नहीं है। औ तसरीहुम बे एहसान, तसरीहुन एहसान के नीचे डाउन एरो लिखिए 3री तलाक, अब फिर दे दो। अब तुम 3 के बाद अब हाथ नहीं लगा सकते उसको, क्योंकि तुमने अपने दो चांस ख़त्म कर दिए। ऐसे होते हैं ना, ऑप्शंस हैं। मिसाल है कि आप एक कार्ड से फ़ोन मिलाते हैं, फिर आप कॉल करते हैं, वो नहीं मिलता, आप गलत नंबर मिलाते हैं, आप दोबारा वो हैश की दबा के दोबारा मिलाते हैं, फिर वो कहते हैं यू यू ओनली हैव वन अटैम्प्ट मोर, एक दफ़ा और कर सकते हैं। हो सकता है आप अगली दफ़ा भी गलत नंबर मिलाएं तो वो कॉल कॉल कट जाती है, फिर आपको नए सिरे से कॉल मिलानी पड़ती है। तो यहाँ भी यही बात है कि दो तलाकों के अंदर रुजू कर लो, इसके बाद फिर तुम क्या करो, या तो उनको रोक लो अच्छे तरीके से, यानी फिर उसको बसाओ, उसको अच्छे तरीके से अपने साथ रखो। नहीं रख सकते, तुम्हें लगता है तुम्हें ये औरत अच्छी नहीं लगती, तुम्हें इसके साथ नहीं रहना, तो तसरीखुम बेहसान, सर रखा यो सर रिखो तसरीख, यानी फिर इसको अच्छे तरीके से छोड़ दो। और वहाँ मारूफ तरीके से रखने में क्या है, मीम सीन काफ रूट है मिस्क, कि अच्छे तरीके से रखो, उसके हकूक़ पूरे करो, उसके जज्बाती हकूक़ का ख्याल रखो, जिस्मानी हकूक़ का ख्याल रखो, उसकी माशी जिम्मेदारियां पूरी करो, उसको तुम खिलाओ पिलाओ, जो कुछ अल्लाह ने तुम पे एक शौहर होने के नाते जिम्मेदारियां डाली हैं उसको पूरा करो। और तसरीहुम बे एहसान क्या है, छोड़ दो एहसान के साथ। इसमें एक चीज़ तो ये है कि अब छोड़ दिया तब उसके खिलाफ इल्ज़ाम ना लगाते फिरो, बड़ी ख़राब थी तुम्हें क्या पता ऐसी थी वैसी थी, बात ही नहीं करनी। और एहसान की एक अगली कैफियत है जिसका आयत के अगले हिस्से में जिक्र है कि वला यहिल्लुलकुम अन ताखुज़ू मिम्मा आतैतुमूहुन्ना शैया, तुम मर्दों पर ये बिल्कुल हलाल नहीं कि तुम औरतों को जो दे चुके हो वो वापस ले लो। यानी ये क्या है, नंबर एक हक महर दे चुके हो शादी के मौके पर, दूसरी बात है कोई गिफ्ट्स दिए हमें अच्छी शादीशुदा जिंदगी के दौरान, कहीं तुमने उसको गिफ्ट दिए, शायद किसी ने कोई वैलेंटाइन पे फूल दे दिया हो, कोई एनिवर्सरी पे दिया हो, कोई कुछ किया हो तोहफे, और वो जो डायमंड के सेट दे चुके हो और जो कुछ दिए, तो अब तुम उसमें से कुछ भी वापस नहीं लोगे। यहाँ पे बात पूरी होती है तसरीखुम बेहसान की। फिर दूसरी बात है कि बातें ना करो, इल्ज़ाम ना लगाओ। हमारे यहाँ तो अजीब ही कल्चर है, कहते हैं कि अब हमने छोड़ी है, अब देखते हैं इसका आगे कहाँ होता है, खूब बदनाम करेंगे। और सच्चा साबित करने के लिए ख़ुद को उस औरत पे इल्ज़ाम लगाते हैं, ये सरासर गैर इस्लामी है। इसलिए इस्लाम क्या सिखाता है कि जिस तरह मिले थे ना तो तोहफ़ा दिया था ना, हमारे अमूमन उसको मुंह दिखाई का तोहफ़ा कहते हैं, शादी के दिन को शौहर बीवी को देता है तो कहा अब जाते हुए भी कुछ दे दो, ये मसला आगे हम पढ़ेंगे जाके, कि बल्कि लेना तो दूर की बात है, उसको जो नहीं दिया वो उसको कुछ गिफ्ट भी दे दो। और दे के तोहफ़ा वापस लेना कैसे, सही बुखारी की रिवायत है कि किसी को कोई तोहफ़ा दे दे इंसान और बाद में वापस ले ले, तो ये ऐसे जैसे कुत्ता कै करे, यानी एक कुत्ता वॉमिट करे और उसको चाट ले, कितनी घिनाई है ना। हमारे यहाँ क्या होता है जब रिश्ते शादियाँ टूटती हैं, वो सास के कड़े वापस करो, वो नंदों की चूड़ियाँ वापस करो, वो जोड़े दो, वो लड़के की राडों की घड़ी लाओ, अब इस पे लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। फिर कहते हैं देखो देखो कितना ढेर है, चीज़ें वापस नहीं करते, वो कहते हैं हमने इस्तेमाल कर ली, खाने के पैसे दो, वो तो लोग खा गए। तो अब इस्लाम क्या कहता है, फिर लोग मसले पूछने आते हैं, तो इस्लाम ये कहता है कि दिया क्यों, किसी हदीस में नहीं कि अल्लाह के नबी ने अपनी बेटियों की सासों को कड़े पहनाए थे और अपने बेटों के घर से ये बेटियों के घरों से जहेज मंगाया था। पहले हम खुद इस्लाम को तोड़ते हैं, फिर उसी के अंदर से फतवा ढूंढते हैं ताकि हमारी कोई इसके अंदर मदद कर दे। तो कहा कि जो दिया है वो ना लो वापस, बिल्कुल इसमें से कुछ नहीं तुम वापस ले सकते, तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं। चलो ठीक है, गोया के जो दिया है वो वापस नहीं दे ले सकते, हाँ मगर एक शर्त है। अब यहाँ से आयत के साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह फॉलोअप करेंगे आप, इल्ला एक्सेप्ट ओनली, दिस इज़ द ओनली वे, क्या अई यखाफा अल्लाह यकीमा हुदूद अल्लाह, कि वो दोनों इस सूरत में हों कि उनको डर क्या है कि हम अल्लाह की हदें पूरी नहीं कर सकते, यानी अब साथ रहने की कोई सूरत ही नहीं है, अब क्या करें। देखिए इस एक आयत में कम से कम चार दफ़ा अल्लाह की हदों का तذکرہ। हद से क्या समझ आता है, लिमिटेशंस बाउंड्रीज़, यानी ये निकाह तलाक रुजू ईला खुला ये सब अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ें हैं, इसके अंदर कमी बेसी जो है ये लोगों को अल्लाह की नज़रों में मुजरिम बनाएगी। ऐसे ही जैसे नॉर्वे की हद से कोई बाहर निकलेगा तो पकड़ा जाएगा ना, या उसके पास वीज़ा होना चाहिए, कोई किसी मुल्क के अंदर आप अंदर आ नहीं सकते, वहाँ आपको इमिग्रेशन में रुकना पड़ता है। इस तरह याद रखो ये सारी चीज़ें अल्लाह की हदें हैं, और जो बंदा इस हद को पूरा नहीं करेगा अल्लाह उसको पूछ लेगा। अब यहाँ तो ये कह दिया कि भाई शौहर दिया हुआ हक मेहर वापस नहीं ले सकता, आयत के अगले हिस्से में और मैं यहाँ ये समझ रही हूँ कि अल्लाह ताला लेडीज़ फर्स्ट वाली बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ अमूमन ये सवाल उठता है ना कि अच्छा जी औरत तलाक नहीं दे सकती, जिस पर हमने पिछले सबक में भी बात की थी। तो यहाँ आप बताया जा रहा है कि एक सूरत है शौहर के पास दिया हुआ तोहफा या हक महर या उससे भी कुछ कमती बढ़ती लेने का, और वो क्या है? फ़इन खिफ्तुम अल्ला युकीमा हुदूद अल्लाह, अगर तुम दोनों को यानी शौहर और बीवी को ये डर है कि हम साथ रह ही नहीं सकते, यानी कोई सूरत ही नहीं हमारे निभा की, और साथ रहेंगे तो बल्कि और गुनाहगार होंगे। बीवी शौहर का हक नहीं देगी तो गुनाहगार है, शौहर अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता तो हक गुनाहगार है। और इस सूरत में कैफियत क्या है कि औरत नहीं रहना चाहती, क्योंकि औरत की ख्वाहिश नहीं है कि मैं इसके साथ रहूं। तो क्या फरमाया? फला जुनाह अलैहिमा, अलैहिमा औरत के लिए आया, फिर अब इस पे गुनाह नहीं, सॉरी अलैहिमा इन दोनों पे, ये लफ्ज़ निकाल दीजिएगा औरत पे, यानी तसनी, फिर अब दोनों पे कोई गुनाह नहीं, ना शौहर पे ना बीवी पे। क्या? फी मफ्तदत बिही, कि अब वो औरत फिदिये में कुछ दे दे। तिल्क हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं। ये है वो आयत जिसको आयते खुला कह सकते हैं आप। बहुत ही मारूफ बात है कि क्या औरत तलाक नहीं दे सकती? तो उसका जवाब है कि औरत तलाक दे नहीं सकती, बल्कि तलाक मांग सकती है। और इस कैफियत को अरबी ज़ुबान में खुला कहते हैं। एक सहाबियाँ थीं अल्लाह के नबी सल्लम के पास आई, अब्दुल्ला बिन उबई की बहन थी ये बहरहाल, अल्लाह के नबी सल्लम के पास आईं और कहने लगीं कि मैं अपने शौहर के साथ नहीं रह सकती। जमीला बिनत अब्दुल्ला नाम था उनका। इनकी शादी साबित बिन कैस से हुई। अब साबित बिन कैस बहुत अच्छे सहाबी भी थे, नेक थे, सब कुछ थे, लेकिन इस औरत को अपने ख़ानदान, और ज़रा एक औरत के अंदर जहन होता है ना कि मैं बड़े ख़ानदान की हूँ, बड़े घर की हूँ, बड़े स्टैंडर्ड की हूँ, इनका दिल नहीं जुड़ा उनके साथ। इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लम के पास आकर अपना मसला पेश किया कि अल्लाह के नबी, ला अना वला साबित, कहने लगी या मैं रह सकती हूँ या साबित रह सकता है। मुराद क्या है? कि हम दोनों इकट्ठे रह ही नहीं सकते, यानी काफ़ी उन्होंने इस बात पे इजहार किया कि मेरा इनके साथ नहीं रह सकती। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि क्या वो बाग तुम वापस दे देना चाहोगी जो तुम्हें मिला था साबित की तरफ से? कहने लगी जी वो भी दे दूंगी और इससे ज़्यादा भी दे दूंगी। अल्लाह के नबी सल्लम ने वो बाग उनसे वापस दिलवाया साबित को, और उस औरत के बिहाफ पर फिर साबित को कहा कि आप इनको तलाक दे दें। तो बस कहते हैं कि इस आयत में उनका जिक्र है, लेकिन यहाँ से आम तौर पे पता चल गया कि जिस तरह मर्द तलाक दे सकता है जबकि बीवी से खुश ना हो, या बीवी उसकी बात ना माने, उसको सताए, तंग करे, या कोई और वजह हो, तो इसी तरह औरत अगर देखती है कि उसको अपने मर्द के साथ नहीं रहना किसी भी वजह से, क्या हालात है, तो वो क्या करेगी? पहली शर्त देखिए कि अल्लाह युकीमा हुदूद अल्लाह, ये है वो बुनियादी वजह जो मर्द के तलाक देने में और औरत के तलाक मांगने में एक बुनियादी की या एक चाबी की हैसियत रखती है कि अल्लाह की हदें टूटे। वरना आप देखें कि मिजाजों में थोड़ी बहुत ही तो हर बंदे में चेंज होती है। कौन कह सकता है कि 100% एक ही जैसे मिजाज होंगे? वो तो सगे बहन भाइयों के नहीं होते। एक माँ की कोख से जन्म लेने वाला बेटा और बेटी, मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये तो इस आसमान के नीचे अल्लाह की कुदरत की निशानी है कि दो गैर लोग, अजनबी लोग, कोई कहाँ पला कोई कहाँ बड़ा, और वो दोनों एक छत में मिलते हैं। सूरत रूम में हम पढ़ेंगे अल्लाह ताला कहते हैं, वह मिन आयाति ही, ये तो मेरी निशानियों में से है कि मैंने तुम्हारे हम नफ्सों को तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारे जोड़े बना दिया। अल्लाह के नबी ने खुद हैरत का इजहार किया कि दो अजनबियों के बीच में निकाह से बड़ी कोई चीज़ नहीं है जो मोहब्बत पैदा करती है, वरना कोई सूरत ही नहीं मिलती। कहाँ कोई बंदा किसी इंसान को कबूल करे और बर्दाश्त करे, और वो भी इतनी कुर्बत से बर्दाश्त करे। तो लिहाजा अगर ऐसी सूरत में अगर थोड़ी बहुत 19-20 है तो उसको बर्दाश्त करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत जन्नत की खुशबू नहीं सूंघेगी, हालांकि जन्नत की खुशबू दूर से आ रही होगी, जिसने बग़ैर किसी वजह या उज़र के तलाक का मुतालबा किया। इसी तरह वो मर्द भी पसंदीदा नहीं करार दिए गए कि जो बात पे बात औरत को तलाक की धमकियां देते हैं। तलाक इमरजेंसी एग्जिट है, ना मुवाफिक हालात इस हद तक ना मुवाफिक हो चुके हों कि बंदा रह ही ना सके। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में एक औरत आई और उसकी तरफ से मुतालबा था कि मुझे अपने शौहर से खुला चाहिए। खुला का लफ्ज़ खला से, खुलासी करना, अलहदगी करना, उसकी तरफ है। कहने लगी कि मुझे अपने शौहर से طلاق چاہیے. حضرت عمر نے کہا کہ کیوں؟ کہنے لگی کہ میں وہاں بہت تنگ ہوں. حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے, اب میں جو کہوں گا وہ کرو. اپنے لوگوں سے کہا کہ اس عورت کو جانوروں کے ڈربے کے اندر بند کر دو, یعنی کوئی ایسا استبل ٹائپ ہوتا ہے نا, گھوڑے بھی اونٹ بھی, گندگی اور بہت گندی سمیل اور بدبو اور بہت ہی خراب جگہ ہوگی. کہا اس کو ایک رات کے لیے وہاں چھوڑ دو. انہوں نے چھوڑ دیا. اگلے دن کہا بلاؤ, واپس لاؤ. جب اس عورت کو بلایا, وہ عورت آئی تو حضرت عمر نے پوچھا سناؤ کیسی رات گزری؟ تو کہنے لگی کہ اپنی زندگی میں بہت سالوں کے بعد ایک بڑی اچھی رات گزری. مراد کیا تھا؟ کہ اس کی زندگی اتنی تلخ ہو چکی تھی کہ اس کو یہ جانوروں کے باڑے میں بدبو میں رہنا زیادہ آسان لگا بجائے اس کے کہ اپنے شوہر کے ساتھ رہے. تو حضرت عمر نے پھر کہا کہ اس کا مطلب کہ اب اکراہ اس حد تک بڑھ چکا ہے. پھر انہوں نے اس کو خلا دلا دیا. تو لہٰذا جب کوئی اس قسم کی کیفیت آ جاتی ہے تو اس صورت میں پھر کیا ہے, عورت کیا کرے؟ اب دیکھیے کہ ذرا سوچیے, اب نکاح اور طلاق کو ساتھ ساتھ لیں گے تو آپ کو کبھی بھی غصہ نہیں آئے گا. نکاح ہوتا ہے, مرد کیا دیتا ہے؟ پیسے دیتے ہیں نا حق مہر کے. شادی کا خرچہ مرد دیتا ہے اگر تھوڑا بہت ہے بھی. شادی کے بعد جو گھر رہنا ہے جس میں بیوی نے کھانا ہے, پکانا ہے, سونا ہے, وہ سب شوہر کی طرف سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ سب کچھ شادی پہ چونکہ مرد نے دیا تھا نا, تو اب طلاق کی صورت میں بیوی سے کہا کہ پھر واپس کرو, کیونکہ اب یہ تو طلاق لے کے جا رہی ہے. ہو سکتا ہے مرد اچھا نیک شخص تھا, وہ نہیں رہنا چاہتا, وہ رہنا چاہتا تھا. کئی ایسی مثالیں موجود ہیں. زینب بنت جحش زید کے ساتھ بیاہی گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زید بہن تھی. آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے زید سے ان کی شادی کر دی, لیکن ان کے دل میں بس ایک بات کھٹک گئی جس کو آپ کہتے ہیں نا ہماری زبان میں کہ ہاں ہاں یہ غلام ہے. حالانکہ وہ خاندانی غلام نہیں تھے, وہ تو حالات کا شکار ہوئے اور بکتے بکاتے آئے اور حضرت ختیجہ نے ان کو خرید لیا اور بعد میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دے دیے. اس دور میں لوگ غلام اسی طرح تحفے میں دیتے تھے جیسے آج لوگ کچن کی مشینیں دیتے ہیں کام کرنے کے لیے. اللہ کے نبی نے ان کو آزاد کیا اور اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. شروع میں لوگ ان کو زید بن محمد بھی کہتے تھے, بعد میں جو منع کر دیا گیا. تو جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ بڑے ہوئے ہیں تو اپنی پھوپھی زاد بہن سے ان کا نکاح کر دیا. تو بس وہ یہ کہتی تھی کہ میرے مجھے آر آتی ہے, لوگ کیا کہیں گے, یہ کل کا غلام, اس کی میرے ساتھ شادی ہو گئی ہے. انتہائی آخری حد تک جب یہ بات پہنچ گئی, زید نہیں دینا چاہتے تھے نکاح, وہ روتے تھے, ان کو بڑی محبت ان سے. لیکن بالآخر پھر وہ طلاق ہوئی اور اسی عورت سے بعد میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ آپ نکاح کریں. یہ ساری سورہ حجرات میں ہم باتیں پڑھیں گے. تو ایسے واقعات جو انہونے ہوتے ہیں یہ اس دور میں بھی ہوئے اور ہوتے ہیں, اور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت نکلی. اللہ کے نبی کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بن گئی یہ بات کہ کل تک جس عورت کو آپ اپنی بہو سمجھیں, چلے منہ بولی بہو کہہ لیں, کل آج آپ اسے شادی کریں, کتنا شور اٹھا ہوگا. یہ تو ہم سارے پڑھیں گے نا پروپیگنڈے قرآن کے اندر کہ اللہ کے نبی کے دور میں لوگ اللہ کے نبی کے بارے میں کس قسم کی باتیں کرتے تھے. تو بہرحال ہے کہ وہ نکاح پھر ختم ہو گیا. اسی طرح ایک لانڈی تھی, بریرہ اس کا نام تھا, اور ان کی شادی ایک غلام سے ہوئی بھی تھی. اب اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جب دونوں میں سے کوئی ایک یعنی آزاد ہو جائے تو اس کے پاس پوری چوائس ہوتی ہے, چاہے وہ پچھلے شوہر کے ساتھ رہیں جو غلام ہے, یا طلاق لے کے ایک آزاد مرد سے شادی کر لیں. ان کی شادی مغیث سے ہوئی ہوئی تھی, ایک صحابی تھے, بڑے اچھے صحابی تھے اور نیک تھے. جب بریرہ آزاد ہو گئی تو اب سوال اٹھا کہ اب یہ مغیث کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہیں. پوچھا گیا, کہنے لگی میں تو طلاق لوں گی, میں تو آزاد شخص سے کروں. مغیث بہت محبت کرتے تھے, کہتے وہ روتے ہوئے گلیوں میں ہائے بریرہ ہائے بریرہ کہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک معاملہ پہنچا. آپ نے پوچھا کہ کیا, تو کہنے کہ اللہ کے نبی میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. پھر آپ نے بریرہ کو بلایا, کہا کہ کیا معاملہ, تم مغیث کے ساتھ نبھا کر لو. تو کہنے لگیں کہ اللہ کے نبی, یہ آپ کا حکم ہے یہ آپ کا مشورہ ہے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا اگر حکم ہے تو مان لوں گی, اگر آپ کا مشورہ ہے تو میں نہیں مانوں گی. اللہ کے نبی نے کہا میرا مشورہ ہے. اس نے نہیں مانا, آزاد ہو گئی, اس نے کسی دوسرے سے شادی کر لی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام کس طرح ریئلٹی پہ لا کے آتا ہے. اب چونکہ شادی کی صورت میں عورت کو ملا تھا, اب یہ مرد اگر دوبارہ کہیں شادی کرتا ہے اس کو پھر ضرورت ہے نا حق مہر کی, تو اس عورت سے کہا کہ اب تم اپنا واپس کر دو, مرضی ہے پورا دینا چاہے. مرد کوئی کہتا نہیں میں نہیں دیتا, جب یہ میرے پاس رہی نہیں تو میں اس کو دیا ہوا واپس نہیں لیتا, کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. کوئی عورت کہتی ہے پورا نہیں اور بھی لے لو, یعنی یہ سب آپشنل کیسز ہیں. جو جس درجے پہ جا سکتا ہے وہاں جائے گا, اور فرمایا کہ پھر وہ اس کو واپس کرے تو اس میں وہ گناہ گار نہیں. دل کا حدود اللہ ہی, یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تعتدوها, دیکھو ان کے قریب نہ جاؤ, ان کو کھیل نہ سمجھو. ہاں ومن یتعد حدود اللہ, جو اللہ کی حدوں کو پامال کرے گا, فاولئک کا حمد ظالمون، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ اب یہاں جو بات ہوئی اس کو خلا کہتے ہیں۔ خلا کے چند مسائل آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں تاکہ یہ موضوع پھر ہم سمجھ کے آگے سے انشاءاللہ اب طلاق کا جو سٹیپ بائی سٹیپ طریقہ ہے اس کو دیکھنے کے قابل ہو سکے۔ تو خلا کیا کہتے ہیں کہ عورت کا کسی وجہ سے اپنے شوہر کو پسند نہ کرنا اور اس کا مال یا حق مہر وغیرہ واپس کر کے اس سے خلاصی حاصل کر لینا۔ اس کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ ناپسندیدگی کا اظہار عورت کی طرف سے ہو۔ اگر مرد ناپسند کرتا ہے نا تو پھر وہ تو طلاق دے گا نا۔ بعض دفعہ بڑا ظلم ہوتا ہے، مرد خود ہی نہیں رکھنا چاہتے لڑکیوں کو لیکن کہتے اتنا تنگ کرتے ہیں کہ یہ خود طلاق مانگے۔ کیوں؟ کہ جو ہی عورت نے مانگی تو پھر حق مہر واپس لے لیں گے۔ کئی گھرانوں میں یہ ظلم ہوتا ہے۔ تو اس کی پہلی شرط یاد رکھیں کہ ناپسندیدگی کا اظہار عورت کی طرف سے ہو، وہ ڈکلیئر کرے کہ ہاں میں نہیں رہنا چاہتی، دے دے حق مہر اس کو واپس۔ ٹھیک ہے، تو پھر اگر مرد خود ہی نہیں رکھنا چاہتا اور ساتھ چاہتا بھی یہ کہ عورت مجھ سے مانگے تاکہ میں کہوں کہ پھر آپ میری چیزیں واپس کرو، تو ایسا اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری شرط کیا ہے کہ عورت اس وقت تک خلع کا مطالبہ نہ کرے جب تک اس کی کراہت اور ناپسندیدگی اس حد تک نہ پہنچ جائے کہ حق زوجیت بھی ادا کرنا اس کے لیے مشکل ہو۔ یعنی پوری کوشش کر لے، آخری دروازہ۔ کیونکہ یاد رکھے کہ ہم ایک دروازے سے نکلتے ہیں نا تو پھر ہمیں کسی دوسرے سے گزرنا بھی ہوتا ہے، ٹٹ فار ٹیٹ۔ آج اگر ایک عورت کو پورا چوائس بھی مل گئی نا کہ وہ بغیر کسی مجبوری کے اپنے دل کے معاملے کے ہاتھوں کسی کے ساتھ نہیں رہ رہی، تو بہت غالب امکان ہے کہ کل کسی ایسے مرد کے پلے ڈال دی جائے کہ اب مرد نہیں اس کو پسند کرتا۔ اور اسی پریکٹیکل بیسیوں اگزامپلز موجود ہیں زندگیوں میں کہ جہاں آپ کسی کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں وہ اگلی لمحے آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور نہ بھی ہو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن بہرحال۔ پھر اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ جب خلع ہوتا ہے تو اس کے بعد عدت ایک مہینہ ہوتی ہے اونلی۔ کہ عدت عام حالات میں تو ہم نے پیچھے پڑھا نا ثلاثۃ قروء، تین، لیکن خلع میں صرف ایک مہینہ۔ کیوں؟ دیکھیے عدت کے دو بڑے مقصد ہیں، سمجھ لیں، وہ آگے بھی جا کے سمجھنا ہے تو یہیں سمجھ لیجئے۔ عدت کا ایک بڑا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ عورت پریگننٹ تو نہیں ہے۔ اسلام میں نسب کی بہت حفاظت کی گئی، اسی لیے زنا حرام ہے۔ اگر بچہ کسی کا پہلے سے پیٹ میں ہو، عورت کی فوراً شادی دوسری جگہ ہو جائے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس بچے کا باپ کون ہے۔ استبراء رحم کہتے ہیں اس کو اردو میں، ذرا مشکل اردو ہے، کہ رحم خالی ہے بچے سے۔ دوسرا عدت کا مقصد کیا ہے کہ عورت سیٹل ڈاؤن ہو جائے، ذہن کو تبدیل کرتے ہوئے وقت لگتا ہے۔ اور عموماً طلاق ہو یا بیوگی ہو، عورت بہت انفلوئنسڈ ہوتی ہے۔ تین ماہ کی اور ادھر بیوگی میں 4 ماہ 10 دن کی عدت کیوں رکھی؟ کہ 3 مہینے وہ مدت ہے جس سے زیادہ پیٹ میں حمل چھپتا ہی نہیں ہے عام حالات میں۔ اس لیے 1 مہینے پیریڈ نہیں ہوئے، ہو سکتا ہے وہ سوچے پریگننٹ ہوں، دوسرے نہیں ہوئے، 3rd ماہ میں ہو جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی جب انسان سٹریس میں آتا ہے، حالات بدلتے ہیں، جیسے عموماً عورتوں کے ساتھ رمضان میں یہ ہوتا ہے، ذرا کھانا پینا چینج ہوا تو ان کے پیریڈز کی روٹین بدل جاتی ہے۔ اسی طرح اتنا بڑا صدمہ آیا، ہو سکتا ہے 3 ماہ تک پیریڈ ہی نہ ہو، تو 3 ماہ تک ویریفائی کر لو۔ اور اسی دوران پھر عورت کا دل تسلی میں آ جاتا ہے، اس کو ذرا چوٹ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، غم ختم ہو جاتا ہے۔ خلع میں کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات ہے کہ عورت خود تیار ہوتی ہے مینٹلی، نمبر ایک، کیونکہ عورت تو پہلے تیار تھی اس لیے اس کو کوئی دھچکا نہیں لگا، وہ تو خوش ہو گئی جان چھٹی، لیکن اتنی خوش نہیں ہوتی جتنی وہ سوچتی ہے۔ یہ لکھ لیں جملہ، ہمیں جب کوئی چیز ملتی نہیں ملی ہوتی ہم کہتے ہیں ہائے مل جائے پھر دیکھنا کیا حال ہوگا، لیکن جب ملتی اتنے خوش ہم کبھی بھی نہیں ہوئے۔ کوئی جوڑا، کوئی زیور، کرسی، میز کا سوچ کے دیکھ لیں، وہ خوشی جو ریئلٹی میں ملتی ہے نا وہ بہت تھوڑی ہوتی ہے امیجینیشن کی خوشی سے۔ کئی لوگ شادی کا سوچ سوچ کے جھومتے ہیں شادی سے پہلے، ہوتی ہے تو وہ روتے ہی دیکھتے ہیں ان کو۔ بہرحال، تو یہ دو چیزیں۔ اب خلع میں 1 مہینے کی رکھ کے، ایک تو یہ وجہ ہے کہ عورت کو غم نہیں ہے، دوسرا یہ کہ جب عورت مرد کو پسند ہی نہیں کر رہی تو تعلق تو پہلے ہی نہیں ہوگا، تو اس لیے اس میں سہولت کر دی گئی، ایک ہے۔ پھر ایک اور جو بہت ہی بگ فرق آپ کو دکھے گا طلاق کے موضوع اور خلع میں، وہ کہ طلاق کے بعد تو مرد رجوع کر سکتا ہے، ہی کین ٹیک ہر بیک، کیونکہ اس نے دی ہے نا، لیکن خلع میں نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا؟ کہ اس نے تو خریدی ہے طلاق، عورت سے پیسے لے کے لیے نا، یا اس سے حق مہر واپس لیے۔ اب عورت بیچاری خرید رہی ہے، یا عورت اپنے حق چھوڑ کے پیسے دے کے طلاق لے رہی ہے، بیچ میں مرد کہے کہ جی میں خود رجوع کرتا ہوں، تو خلع کے بعد مرد کے پاس رجوع کا حق نہیں ہوتا۔ फिर इसी तरह एक इसके अंदर आप ये छोटी सी बात नोट कर सकते हैं कि बाद दफ़ा लोग छोटी उम्र की नाबालिग बच्चियों की शादियां कर देते हैं कहीं, बाद में पता चला वो लड़का तो वो है ही नहीं जो सोचा था, वो तो बड़ा ख़राब निकला। अब बाप ही कह रहे हैं जी मुझे तलाक दिलवानी है बेटी को। तो अगर नाबालिग बच्ची है तो फिर उसकी तरफ से उसका बाप भी खुला का मुतालबा कर सकता है। ये बहुत कम होता है लेकिन ट्राइबल एरिया में और देहातों में इस किस्म की चीज़ें होती हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ हमें ये इस बात बता के मुझे तो ऐसे लगता है कि ये मैसेज दिया कि औरत के तलाक लेने की बात पहले की गई मर्द के तलाक देने से। अब अगली आयतें जो हैं आयत नंबर 230 और इससे कुछ अगली आयतें हैं, तो इसके अंदर तलाक की कुछ मज़ीद बातें हैं।